और हम देखेंगे कि यहां और कोई नहीं आएगा इस जमीन में। तो फिर जब भक्तों ने स्नान कर लिया, इस कोने से इस कोने में आए, तो कहने लगे देखो हमारे भगवान उनके भगवान से ज्यादा शक्तिशाली है। अभी और हम थोड़ी हमारे भगवान की पूजा करेंगे तो वो यहां से चले जाएंगे। तो जब अभी 4-5 साल हो गए तो बोले नहीं, उनका भगवान काफी शक्तिशाली है, उनके भगवान उनको टिका के रखे हुए हैं वहां पर। तो देखिए लोगों के मन में कैसे कैसे धारणाएं होती हैं, हमारा भगवान, आपका भगवान। भगवान किसी की संपत्ति नहीं है। हाँ, भक्तों की संपत्ति भगवान होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके भगवान कोई हैं, हमारे भगवान कोई हैं, ऐसा नहीं है। भगवान तो भगवान है, सबके लिए भगवान है। हमने किसी व्यक्ति को भगवान बना दिया तो वो भगवान बनते नहीं है। भगवान कोई पद नहीं है जिसको चुनाव में भगवान बनाया जा सकता है। तो बलराम जी और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, है एक ही स्वरूप, केवल काय उनकी उनका देह अलग है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया है बलराम के रूप में। बलराम गोरे हैं, श्री कृष्ण सांवले हैं, बस दोनों में इतना ही अंतर है। तो क्या आवश्यकता थी भगवान को इतने सारे अपने रूप बनाने के लिए? पहले तो उन्होंने बलराम का रूप बनाया, फिर बलराम से और कितने सारे रूप आए भगवान के, अनंत रूप है भगवान के। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जितने समुद्र में लहरें हैं उतने भगवान के अवतार हैं। आप में से किसी ने समुद्र की लहरों को गिनने का प्रयास किया है? संभव नहीं है। उसी प्रकार भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों की गणना करना ये संभव नहीं है, परंतु मूल है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण से बलराम जी आते हैं, बलराम जी से जितने भी और विस्तार हैं वो आते हैं। तो दोनों भगवान हैं, कृष्ण भगवान है और बलराम जी भी भगवान है, परंतु भगवान ने अपने आप को विस्तार किया है अपनी ही सेवा के लिए। भगवान श्री कृष्ण सेवा स्वीकार करते हैं, इसलिए वो सेव्य भगवान हैं। उन्होंने बलराम जी का रूप स्वीकार किया है अपनी सेवा करने के लिए, तो बलराम जी हुए सेवक भगवान। सेव्य भगवान और सेवक भगवान, इस प्रकार से बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की तरह तरह से सेवा करते हैं। कभी कभी एक मित्र या सखा के रूप में सेवा करते हैं वृंदावन में, बड़े भाई होने के नाते कभी कभी बलराम जी को चिंता रहती है, अरे कृष्ण वहां नहीं जाना, वहां खतरा है, धोखा है। तो ये एक तरह का वात्सल्य भाव हो गया कृष्ण के प्रति। कभी कभी कृष्ण की सेवा भी करते हैं बलराम जी दास्य भाव में। बलराम जी ने अपने आप को विस्तार किया एक गोपी के रूप में, जिनका नाम है अनंग मंजरी, जो कि श्रीमती राधा जी की छोटी बहन है। उस रूप में भी वो बलराम जी की सेवा करती है। तो बलराम जी सेवा करने के लिए प्रकट हुए हैं, हैं वो भगवान, परंतु श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए वो बने हैं सेवक भगवान। जब ब्रज में श्री कृष्ण प्रकट हुए 5000 वर्ष पूर्व, तो बलराम जी उनके पहले आए। कृष्ण जन्म की कथा तो आप सबको मालूम है। कंस ने अपनी बहन देवकी को और देवकी के पति वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया था, क्योंकि भविष्यवाणी ऐसे हुई थी, एक आकाशवाणी हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करने वाला है। तो कंस बाहर खटाए गए थे और कारागार में बंद जब हुए, फिर वसुदेव को छोड़ दिया, देवकी को छोड़ दिया कि अभी क्या होगा, एक बच्चा है देख लेते हैं, आठवां बच्चा है जो मुझे मारेगा। लेकिन जब वसुदेव आए पहले बच्चे को लेकर, जैसे कि उन्होंने वचन दिया था, तो कंस का हृदय पिघल गया और कहा ठीक है, वैसे तो आठवां पुत्र है ना जो मुझे मारेगा, तो आप चले जाओ बच्चे को लेकर। लेकिन नारद जी चिंतित हो गए कि ये क्या हो गया, अभी कंस भी दयालु होने लगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब मामला। भगवान अवतार लेते हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए। अब थोड़े समय के लिए ये लोग दयालु हो गए, अपनी दुष्टता को भूल गए और भगवान नहीं आएंगे फिर, और फिर से ये लोग दुष्ट बन जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। तो फिर नारद जी कंस के पास गए और कहने लगे कि हे कंस राजा, देखिए ये कहा गया है कि आठवां पुत्र देवकी का आपकी हत्या करेगा, लेकिन कौन सी तरफ से आठवां, इधर से आठवां या इधर से आठवां, कोई भी हो सकता है। अच्छा ये बात है। अच्छा तो तुरंत वसुदेव देवकी को बुलाया और उस बच्चे को मार डाला, फिर दोनों को जेल में बंद कर दिया। ऐसे 6 बच्चों की हत्या कंस ने कर दी। जब 7वीं बार देवकी गर्भवती हुई तो अनेक महीनों तक बालक देवकी के गर्भ में रहा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया शक्ति को बुलाया और कहा कि देखो हे देवी, अभी तुम्हारे लिए एक सेवा है। देवकी है जो कंस के कारागार में बंद है, उसके गर्भ में अनंत शेष विराजे हैं। मेरी अनंत शेष शक्ति बलदेव जी स्वयं वहां पर निवास कर रहे हैं देवकी के गर्भ में, तो उस गर्भ को स्थानांतरित करना देवकी के गर्भ से जो कि मथुरा में है, और रोहिणी देवी के गर्भ में जो कि नंद महाराज के सुरक्षा में आश्रय में रुकी हैं गोकुल में, और वहां पर तुम यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लेना, तुम यशोदा मैया की पुत्री बन जाना और मैं इधर देवकी का आठवां बच्चा बन जाऊंगा और तुम बहुत विख्यात हो जाओगे सारे दुनिया में, दुर्गा विजया अंबिका ईशानी नारायणी ऐसे नामों से। और ये बच्चा जो इस समय देवकी माता के गर्भ में है और जो आगे चल के तुम्हारी सेवा से रोहिणी माता के गर्भ में जाएगा, उसका नाम आगे चल के संकर्षण होगा, क्योंकि देवकी के गर्भ से बच्चा आकृष्ट होकर रोहिणी देवी के गर्भ में चले जाएगा। गोकुल के निवासियों को वो बच्चा बहुत दिव्य आनंद प्रदान करेगा, इसलिए उसका नाम होगा राम। रम रम धातु, रम मतलब आनंद, और इसका नाम बलभद्र भी होगा क्योंकि बहुत बलशाली होगा ये व्यक्ति, ये बच्चा। तो जाओ। तो योग माया ने जैसे भगवान ने बताया वैसे ही किया। जब 7वें गर्भ को स्थानांतरित किया गया तो सभी ने सोचा कि देवकी माता के 7वें पुत्र का गर्भपात हो गया है, और उधर अनंत शेष बलदेव जी का जन्म केवल 5 दिन बाद रोहिणी के गर्भ से हुआ। रोहिणी की गर्भ से जब जन्म हुआ तो सभी को आश्चर्य हुआ कि केवल बच्चा 5 दिन गर्भ में था और फिर उसने जन्म लिया, ये कैसे है। खैर, क्योंकि रोहिणी देवी नंद महाराज के आश्रय में थी तो नंद महाराज ने जात कर्म संस्कार आदि करने की व्यवस्था कर ली, ब्राह्मणों को पुरोहितों को बुलाया, जगह जगह से बड़े बड़े ऋषि मुनि संत वहां पर आए, जैसे असित, देवल, बृहस्पति, वशिष्ठ, नारद, व्यासदेव आदि सभी आए। सभी आश्चर्यचकित हुए और फिर नंद महाराज ने उनसे पूछा कि मुनिवर आप ये बताइए कि ये इतना सुंदर बच्चा है कि इसके सौंदर्य की कोई सीमा नहीं है, ऐसे बच्चे को कभी हमने देखा नहीं, ये यहाँ हमारे कुल में कैसे जन्म, इसने कैसे जन्म लिया है, ये कौन है? तो व्यासदेव जी ने कहा कि देखो नंद नंद जी, नंद बाबा, ये स्वयं अनंत शेष है और आपका सौभाग्य है कि ये अभी आपके घर में रोहिणी देवी के घर में जन्म लेने वाले हैं। वास्तव में ये वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, परंतु अब यहाँ रोहिणी देवी के घर से जन्म लेने वाले हैं। तो आपका अहो सौभाग्य है कि आपके घर में ये बच्चा जन्म लेगा, आगे चल के ये बहुत अद्भुत लीलाएं, अद्भुत कार्य करेगा। तो व्यासदेव ने फिर कहा कि मुझे बच्चा दिखा दो, फिर बच्चे का दर्शन किया। व्यासदेव और अन्य संतों ने बच्चे की परिक्रमा प्रदक्षिणा की 100 बार और बच्चे को नमस्कार करके वहां से निकल पड़े। जब श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ मथुरा में चतुर्भुज रूप में, और वसुदेव उस बालक को लेकर यमुना पार गोकुल तक आए यशोदा मैया के कमरे में, तो उन्होंने देखा कि माता यशोदा के पास में एक छोटी सी बच्ची है जो कि योग माया थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बालक कृष्ण को वहां रख दिया और उस कन्या को उठा लिया और चले आए वापस। वास्तव में एक बहुत गुही बात है जो अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। इस बात को तो जानते हैं कि यशोदा माता की एक पुत्री हुई और उधर देवकी माता के गर्भ से कृष्ण का जन्म हुआ और दोनों की बदली हो गई। परंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पुराणों के आधार से बताते हैं कि वास्तव में गोकुल में यशोदा माता के जुड़वे बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़के थे श्री कृष्ण जो इस तरफ थे और लड़की थी योग माया जो इस तरफ दूसरे तरफ थी। जब वसुदेव वहां पर आए तो उन्होंने केवल लड़की को देखा, तो वहां कृष्ण को रखा, मथुरा कृष्ण को, देवकी नंदन कृष्ण को वहां रखा, बच्ची को अर्थात योग माया को उठाया और चल दिए वापस मथुरा। उधर ये दोनों कृष्ण यशोदा मैया के दोनों ओर थे, एक ओर यशोदा नंदन कृष्ण जिनका जन्म गोकुल में हुआ, दूसरी ओर देवकी नंदन कृष्ण जिनका जन्म मथुरा में हुआ। और फिर शास्त्र में बताया गया है कि दोनों कृष्ण मिल गए और यशोदा नंदन कृष्ण बन गए। मूल कृष्ण यशोदा नंदन कृष्ण है, नंद नंदन कृष्ण, श्याम सुंदर गोविंद वृंदावन के कृष्ण, वही मूल है तत्व जिनसे कि जितने भी विस्तार अवतार हैं वो सब प्रकट होते हैं। तो वहां पर श्री कृष्ण का जब प्रकट हुआ गोकुल में, तो नंद महाराज को खुशी भी हुई और चिंता भी हुई। खुशी क्योंकि इतना सुंदर बालक का जन्म हुआ, अनेक वर्षों के बाद नंद महाराज और यशोदा मैया की उम्र काफी बढ़ गई थी, अनेक वर्षों तक उनको संतान नहीं हुआ। अब उन्होंने सोचा भगवान की कृपा से, भगवान नारायण की कृपा से हमें एक संतान मिल गया है, बच्चा है, कितना सुंदर है ये बच्चा। लेकिन जैसे ही कंस को पता चलेगा कि हमारे घर में बच्चा हुआ है तो वो अवश्य कुछ शैतानी करेगा, तो क्या किया जाए, वैसे संस्कार तो करने चाहिए। तो अब नामकरण संस्कार करना है, जात कर्म इत्यादि, तो अगर खुलेआम भी किया जाए तो फिर धोखा है, खतरा है इसमें। तो फिर नंद महाराज ने चुपके से उनके कुल गुरु गर्ग मुनि को बुलवाया और दोनों बच्चे जो थे, एक तो रोहिणी देवी के गर्भ से जो प्रकट हुए थे और दूसरे यशोदा मैया के गर्भ से जो प्रकट हुए थे, दोनों के नामकरण संस्कार एकांत स्थान में एक साथ कर दिए। किसी को बताया नहीं, केवल गर्भवती वहां पर थे। तो गर्भवती ने दोनों बच्चों का नामकरण कर दिया। और जब बलराम जी की बात आई तो उन्होंने कहा कि हेमंत बाबा देखिए, ये बच्चा, इसका नाम संकर्षण होगा, न केवल इसलिए कि उसको देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था, परंतु एक और कारण है कि वसुदेव और नंद बाबा आप दोनों के परिवारों को ये बच्चा मिला देगा। कैसे मिलाएगा? वैसे नंद महाराज और वसुदेव दोनों के पिता शूरसेन थे। शूरसेन के एक क्षत्रिय पत्नी से वसुदेव का जन्म हुआ। शूरसेन से के एक वैश्य पत्नी से नंद महाराज का जन्म हुआ। वसुदेव ने आगे चल के क्षत्रिय महिलाओं से, स्त्रियों से विवाह किया। उधर नंद महाराज ने गोकुल और नंद गांव में एक वैश्य कन्या से विवाह किया। इसलिए नंद महाराज से वैश्य परंपरा शुरू हुई और वसुदेव से क्षत्रिय परंपरा चलती गई आगे। तो अब जब बलराम जी आए तो बलराम जी ने दोनों के परिवारों को एक कर दिया, दोनों को मिलाया। तो इसलिए गर्ग मुनि ने कहा कि इनका नाम होगा संकर्षण, और राम भी इसलिए क्योंकि ये सबको दिव्य आनंद देंगे, और इनका नाम बलदेव होगा क्योंकि बहुत ही बलशाली होंगे। तो वैसे इनका नामकरण संस्कार हुआ। दोनों प्रकट हुए, दोनों भगवान कृष्ण और बलराम इस प्रकार ब्रज में प्रकट हुए। भगवान अनेक योनियों में प्रकट होते हैं। आपने मत्स्य अवतार का नाम सुना होगा, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, ऐसे अलग अलग अवतारों में भगवान प्रकट होते हैं। और जिस योनि में भगवान प्रकट होते हैं उस योनि के हिसाब से उनके कार्य कलाप रहते हैं। जब वो मछली का अवतार लेते हैं, मत्स्य का अवतार, तो जल में तैरते हैं, उस समय वो जमीन में आके महल में नहीं रहते। एक मछली तो जल में तैरती है, तो भगवान जब मत्स्य अवतार के रूप में आए तो वो भी जल में तैरने लगे। उसी प्रकार से कछुआ जो होता है वो भी जल के नीचे रहता है। तो भगवान ने जब कूर्म अवतार लिया वो भी जल के भीतर थे, और जब वराह भगवान का अवतार मान लिया तो वो नीचे गए, एक निम्न स्थान पर जहां पृथ्वी माता थी उनको उठा लिया। तो ठीक उसी प्रकार जब श्री कृष्ण और बलराम मनुष्य समाज में प्रकट हुए तो मनुष्य समाज में जैसे रीति है या जैसे तरीका है उस हिसाब से वो कार्य करने लगे, मनुष्यों की नकल करने लगे। भगवान को बच्चे होने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान को प्रकट होना है तो यूं ही प्रकट हो सकते हैं। जैसे वो अपने धाम में है वैसे ही यहां प्रकट हो सकते हैं। परंतु भगवान ने देखा कि चलो मैं जब मनुष्य समाज में प्रकट होने वाला हूं तो मनुष्यों की नकल करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने नकल की लेकिन शत प्रतिशत नकल नहीं की। क्यों? क्योंकि जब जन्म हुआ कृष्ण का और बलराम का भी तो दोनों माताओं को कष्ट नहीं हुआ। जैसे कि इस दुनिया में जब एक मनुष्य योनि में माता बच्चे को जन्म देती है तो दर्द बहुत होता है, कठिनाई बहुत होती है, लेकिन देवकी और यशोदा माता को कोई कष्ट नहीं हुआ, न रोहिणी देवी को हुआ। भगवान अंदर थे, बाहर प्रकट हुए। और जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो उनके सर पे बाल थे, वस्त्र थे, आभूषण थे। तो अलंकार युक्त, अलंकार सहित, वस्त्र सहित भगवान प्रकट हुए। तो हालांकि वो नकल करते हैं लेकिन थोड़ा कुछ ऐसे भी कर देते हैं जिससे कि लोग जान ले कि हाँ ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। इशारा दे देते हैं ऐसी छोटी छोटी चीजों से जो बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। ठीक है मनुष्य समाज में आया हूं, आप सब की तरह मैं भी बच्चा बन के आ रहा हूं, लेकिन याद रखना मैं कौन हूं। देखो मैं वस्त्र पहन के आया हूं। तुम वस्त्र पहन के आए थे क्या? नहीं। तो मैं तुम्हारे जैसे हूं ऐसे दिखा रहा हूं, लेकिन वास्तव में तुम्हारे जैसे नहीं हूं, मैं तो भगवान ही हूं। तो नकल करते करते भगवान को बड़ा आनंद आता है। तो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं कि धीरे धीरे से उनको जब उनके शरीर में जब ताकत बढ़ी तो अपने घुटनों पे वो थोड़ा बहुत चलने लगे, अपने हाथों में थोड़ी ताकत आ गई थी, घुटनों में ताकत आ गई थी। तो जैसे यहाँ भी बच्चे चलते हैं तो वैसे भी ये भी घुटनों में चलने लगे। और ब्रज में क्या है, ब्रज में बाहर घर के बाहर जाते तो वहां मिट्टी है, गोबर है, गौमूत्र है। तो कृष्ण और बलराम अपने घुटनों पर चलते और सारे शरीर पे गोबर गौमूत्र मिट्टी का लेप लग जाता, क्योंकि कभी कभी घुटनों में चलते चलते गिर पड़ते तो सारे मिट्टी और गोबर भी गिर पड़ते। और इस प्रकार से चलते चलते लोग देखते उनको बड़ा आनंद उनको मिलता। फिर यशोदा माता आती या रोहिणी देवी आती, उनको बच्चों को उठा लेती, ये नहीं सोचती, घृणा नहीं करती कि अरे रे जी 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 गोबर है शरीर में सब गंदा है चलो धो लेते हैं, नहीं, गोबर सहित मिट्टी सहित उनको आलिंगन कर लेते थे। गोबर को कभी गंदा नहीं माना जाता था ना मानना चाहिए, ये तो सबसे शुद्ध वस्तु है। अशुद्ध जगह को शुद्ध करने के लिए गोबर का प्रयोग किया जाता है, गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। यहां तक कि जब भगवान के मंदिर में गर्भगृह में जहां ठाकुर जी विराजमान होते हैं, जहां पर भगवान की अर्चा विग्रह होती है, उस स्थान को पवित्र करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए भी गौमूत्र गोबर का प्रयोग किया जाता है। ये वैदिक संस्कृति है, शास्त्रों में कहा गया है इस बात को, इसलिए हम स्वीकार करते हैं, इसको शब्द प्रमाण कहते हैं। हम एक जगह गए थे कानपुर में और वहां उन्होंने गोबर से इतने सारे चीजें बनाए हैं, गोबर से कागज बनाया उन्होंने, कागज, गोबर से उन्होंने टाइल बनाए हैं दीवार को लगाने के लिए, और उन्होंने जमीन बहुत जोर से फेंक के दिखाया, टूटते नहीं है, बड़े सुंदर हैं दिखने में, मजबूत हैं, टिकाऊ हैं। और जो अणु के किरण होते हैं उनसे भी बचाते हैं, इसमें केवल गोबर और भूसा, इससे उन्होंने ऐसे सुंदर चीजें बनाई हैं। तो इतने चीजें हैं, गुण हैं गोबर में, गोमय बसते लक्ष्मी ही, गोबर में लक्ष्मी देवी का निवास होता है। तो इसलिए माता यशोदा माता रोहिणी ने संकोच नहीं किया कृष्ण और बलराम को उठाने के लिए और आलिंगन करने के लिए। कभी कभी जब ऐसे घुटनों पर चलते चलते वो किसी गोपी के नूपुर की आवाज सुनते थे तो आकर्षित हो जाते थे, सोचते थे कि मैं हमारे मेरी माता है, पीछे पीछे जल्दी जल्दी चलते। जब ये गोपियां पीछे घूम के देखती, अरे देखो कृष्ण बलराम आ रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है, तो आवाज सुन के उनको पता चलता कि अरे ये तो हमारी माता नहीं है, तो फिर जल्दी जल्दी से घबरा के वापस चले जाते, क्योंकि उस समय तक देख लेते कि हम बहुत दूर चले गए हैं, हम कहाँ गए, घर तो बहुत दूर है, तो डर के मारे पीछे भाग, फिर से जल्दी जल्दी से घुटनों पर चल के वापस जाते थे माँ के पास। तो ऐसी लीलाएं भगवान कर रहे हैं। है कोई ऐसे विचार किसी देश में किसी अन्य धर्म में कि भगवान की ऐसे कल्पना कभी होती है कि भगवान घुटनों पे चल रहे हैं, चलना भी नहीं जानते हैं, अभी तक बोलना भी सीखे नहीं हैं, गोबर में मिट्टी में खेल रहे हैं और घबरा जाते हैं, देखते हैं कि मेरी माता से मैं दूर चले गया हूँ, कहाँ है मेरी माँ। परंतु ये भगवान है, भगवान ऐसे वात्सल्य रस का आनंद ले रहे हैं। इसलिए एक वैष्णव कवि ने कहा है, श्रुतिम अपरे स्मृति इतरे भारतम अन्ये भजन्तु भवभीताः, अहम इह नन्दं वन्दे यस्यालिन्दे परम ब्रह्मा। वो कहते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो श्रुति अर्थात वेदांत उपनिषद आदि इनकी उपासना करते हैं, कोई अन्य लोग हैं जो स्मृतियों की उपासना करते हैं, स्मृति अर्थात पुराण इतिहास रामायण महाभारत आदि, भारतम अन्य और भी है जो महाभारत आदि की पूजा करते हैं। क्यों? भजन्तु भवभीता, वो इसलिए भजन करते हैं, इसलिए उपासना करते हैं कि वो संसार के दुख से बहुत डरते हैं, वो संसार के डर से, वो संसार के दुख से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसे वेद पुराण आदि की उपासना करते हैं। लेकिन ये कवि कहते हैं, जहां तक मेरा सवाल है, अहम इह नंदम वंदे यस्य आलिंदे परम ब्रह्म, मैं नंद महाराज के आंगन की उपासना करता हूं, जिस आंगन में पर ब्रह्म एक छोटे से बालक बन के वहां घुटनों पर चल रहे हैं, उस आंगन की मैं पूजा करता हूं। वो आंगन का सौभाग्य है, अहोभाग्य है, उस मिट्टी का अहोभाग्य है कि इसमें परम ब्रह्म श्री कृष्ण अपने चरण कमल वहां उस रज में डाल रहे हैं। तो मेरे लिए यही काफी है, मुझे इनसे बड़े बड़े चीजों की आवश्यकता नहीं है, बस यही सब कुछ है। तो कितनी सुंदर बात है ये, भगवान यहां पर प्रकट होते हैं और ऐसे सुंदर सुंदर लीलाओं को प्रकट करते हैं हमारा मन आकर्षित करने के लिए। हमारा मन जो कि इस समय संसार के वस्तुओं में, संसार के विषयों में उलझा हुआ है, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ऐसी लीलाएं करते हैं तो भक्तों को बोलने के लिए, सुनने के लिए, स्मरण करने के लिए विषय मिल जाते हैं, जिससे कि हृदय का शुद्धिकरण होता है, प्रेम की उत्पत्ति होती है। यस्याम वै शूयमानायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयावह। तो जब परम पुरुष श्री कृष्ण के बारे में हम सुनते हैं, उनकी दिव्य लीलाओं के बारे में हम श्रवण करते हैं, तो शोक मोह भय ये सब नष्ट हो जाते हैं और उनके प्रति प्रेम जागृत हो जाता है हृदय में। शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, अनर्थोपशमं साक्षात, वो कहते हैं अनर्थों से सब भरा हुआ है हमारा हृदय, तो अनर्थों का शमन करना है, अनर्थोपशमं साक्षात, तो क्या करना चाहिए? भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्याजनंतो विद्वंस चक्रे सात्वत संहिता। लोग नहीं जानते कि भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके संसार में जितने भी हमारे कष्ट हैं, दुख हैं, वो सब मिट जाएंगे। लोकस्य अजानतो विद्वंस, लोग साधारण लोग जो है, जन साधारण इस बात को नहीं जानती है, इसलिए वो केवल संसारी विषय में रमण करते रहते हैं, परंतु भगवान ने भक्ति योग का पथ दिया है संसार को। भक्ति योग का पथ क्या है? बड़ा सरल है, सहज है, बस भक्तों के सर में आना है और भगवान कृष्ण की सुंदर लीलाओं को सुनना है श्रद्धा पूर्वक, बस ये भक्तों की पहचान होती है। मत चित्त मत गत प्राणा बोधयंतस परस्परम कथयंतस च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्तों की रुचि इसी में है केवल, उनका प्राण धन भगवान श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण की कथाएं सुनने में वो बहुत रुचि रखते हैं और आपस में परस्पर केवल भगवान की बातें ही करते हैं, संसार की बातें नहीं करते हैं। तो यह है भक्ति योग, केवल हमें सुनना है भगवान के बारे में। लेकिन बाहर की दुनिया में देखिए, लोग कितने सारे अनपशना बोले जाते हैं, सुने जाते हैं। कोई आप रेलगाड़ी में बैठिए कोई लंबी यात्रा में, तो देखिए क्या दशा हो जाती है, क्या क्या नहीं चर्चा करते हैं लोग, और लोग चुप ही नहीं बैठ सकते, बहुत मुश्किल है लोगों को चुप बैठना। और कहां कहां की बातें, कुछ ना कुछ बोलते रहते, बक 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 चलता रहता है। लेकिन भगवान के बारे में एक बात गलती से भी नहीं निकलती है। और भगवान के भक्तों को देखते भी हैं तो भी कुछ ना कुछ मजाक उड़ाना या कोई टीका टिप्पणी करना, मेरी राय में स्वामी जी ऐसा है कि अरे आपकी राय के क्या मूल्य है, भगवान की राय क्या है ये हमें जानना चाहिए। वो बातें करते रहेंगे करते रहेंगे। एक घटना हमारे साथ हुई थी, हम बार बार इसको दोहराते हैं क्योंकि बात बहुत बैठ गई। एक बार जब हम रेलगाड़ी में जा रहे थे तो हमारे सामने दो तीन महिलाएं थी, गुजराती भाषा में बात कर रही थी और हम लंबे सफर में थे। अब दैव से हमें सीट मिल जाता है ट्रेन में, जैसे दैव से एक कुटुंब मिलता है, शत्रु मित्र मिल जाते हैं पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से, वैसे रेलगाड़ी में भी हमारे सहयात्री वैसे मिल जाते हैं। तो पता नहीं होता, हर बार रेल यात्रा शुरू करने के पहले सोचना पड़ता भगवान कोई कुछ देखिए देखभाल कीजिए। तो ये जैसे यात्रा शुरू हुई, बल्कि यात्रा शुरू होने के पहले से इनकी बातचीत शुरू हुई और बोलते गए 12 घंटे तक बातचीत चलती रही। आखिर हमसे रहा नहीं गया, हमने कहा माता जी कृपया करके 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट रुक गया, अब कुछ मत बोलिए 5 मिनट। तो ऐसा है, लोग न जाने कैसे कैसे विषय में बोलते जाते हैं, उनके सारे परिवारों का इतिहास आपको पता चल गया, जो उनके घर के बीच में किसका झगड़ा किसके साथ हुआ, किसके शादी के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी बातें। और उनके जीवन में बस यही बातें घूम रही हैं, यही चीज है। भगवान के पास भी कोई स्थान ही नहीं है मन में, इसलिए तो भगवान आते हैं और ऐसे बाल लीला भी करते हैं। देखिए, एक घर में, किसी भी घर में अगर एक बच्चे का जन्म होता है तो सारे घर की बातचीत, पड़ोसियों की बातचीत 90% उस बच्चे के ऊपर ही केंद्रित होती है, है कि नहीं? आप सब ज्यादा अधिकतर गृहस्थी हैं, आप तो अनुभव कर चुके हैं बच्चे के बारे में ही, आज बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने ऐसे किया, बच्चा ऐसे हंसा, अरे बच्चा ऐसे उठा, बच्चा ऐसे गिर गया, बच्चे के बारे में ही कथा, शिशु कथा चलती रहती है और लोगों को बड़ा आनंद आता है। और बच्चा जब तोतली आवाज तोतली बोली में बोलने लगता है, पहली बार चलता है फिर गिर जाता है, तो सभी कर की नजर उसके ऊपर ही रहती है, बातचीत वही चलती रहती है घर में सुबह से रात तक। तो अगर एक साधारण बच्चे के बारे में बात करने से लोगों को इतना आनंद आता है, इतना चित्त भर जाता है, तो जब भगवान जो कि सर्व आकर्षक है जब वो प्रकट होते हैं और वो ऐसी बाल लीला करते हैं तो कितना वो आकर्षक होगा, कल्पना कीजिए। तो ब्रजवासियों के मन में कितना दिव्य आनंद हुआ होगा जब उन्होंने श्री कृष्ण और श्री बलराम जी की इन लीलाओं को देखा, साधारण बच्चों की तरह। तो जब और थोड़े बड़े हो गए तो धीरे धीरे से उठे तो सारे ब्रज में बस कृष्ण और बलराम की कथा चलती रहती। बच्चे तो अनेक थे, अपने बच्चों की कथा छोड़कर अन्य गोप और गोपियां कृष्ण और बलराम की कथाएं करते थे। ये है वृंदावन की खूबी, कृष्ण और बलराम के अलावा वो कुछ नहीं जानते थे। और फिर धीरे धीरे से वो चलने लगे और चलते हुए फिर कभी कभी गिर भी जाते थे, उठते थे, फिर अपने मित्रों के साथ, अपने मित्र हो गए थोड़े बहुत, उनके साथ खेलना शुरू हो गया। और जब इधर उधर जाते थे तो शरारत शुरू हो गई, फिर गोपियों के घर में जाते, फिर गोपियां जो है उनके कृष्ण बलराम के लीलाओं को देखकर आनंदित हो जाती पर शिकायत करने भी आ जाती माता यशोदा के पास, क्योंकि उनको कृष्ण बलराम की लीलाओं का वर्णन करने में बहुत अच्छा लगता था। हालांकि उनके घर में आके तहस नहस करके गए थे श्री कृष्ण और बलराम जी, दोनों जोड़ी में जाते थे साथ में कृष्ण और बलराम दोनों। तो गोपियां माता यशोदा के पास आके शिकायत करती, अरे देखो यशोदा, ये तुम्हारे कृष्ण बलराम हैं। देखो हमारे घर में आते हैं और दही मक्खन आदि चोरी करते हैं, और जब वो पकड़े जाते हैं रंगे हाथ, तो इस प्रकार से हंसते हैं, उनकी मुस्कान इतनी मीठी होती है कि पर हम डांटने का मन ही नहीं होता, केवल हंस के चले जाते हैं। तो क्या करें? और कभी-कभी जब उनको दही मक्खन नहीं मिलता है ना, तो क्या करते हैं? वो इधर-उधर ढूंढते हैं और नहीं मिला फिर भी, तो हमारे बच्चों को ऐसे छेड़ के जाते हैं, बच्चों को रुलाकर भाग चले जाते, भाग जाते हैं। और जब मक्खन या दही मिल जाता है तो अपने भरपेट तो खा लेते हैं, और बाकी जो बंदर हैं बंदरों को खिला देते हैं। बंदरों को भी पेट भर जाता है, तब फिर मटके वगैरह तोड़कर पूरा तहस नहस घर में करके वहां से भाग जाते हैं। और जब हमारे पति कृष्ण को पकड़ते हैं, बलराम को भी पकड़ते हैं, और कहते हैं कि तुम चोरी करते हो, तो दोनों सीना तान के बोलते हैं, मैं चोर नहीं तुम चोर हो। तो गोपियों को ऐसी बातें करने में बहुत आनंद आता था, बहुत अच्छा लगता था। हालांकि कृष्ण बलराम ने इतना कुछ नुकसान के घर में किया था, लेकिन ऐसे नुकसान करने से उनको बहुत अच्छा लगता था। बस वो बहाना ढूंढते थे कि किस प्रकार से जाके ये कथा करती जाए करती जाए। याद रखिए, ये गोप और गोपियां कोई बड़े बड़े विद्वान नहीं थे, स्कूल कॉलेज में पढ़े लिखे नहीं थे, ना कोई बड़े ज्ञानी थे, तपस्वी थे, वैरागी, योगी, कुछ नहीं, साधारण एक गांव के लोग थे। उनके जीवन में क्या था? गाय और बैल और दही दूध मक्खन, बस यही इनका जीवन था। लेकिन फिर भी उनके मन में ऐसा प्रेम भगवान श्री कृष्ण के पास था, इसलिए श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए, और प्रकट होकर उन्होंने ऐसी लीलाएं उनके साथ की। फिर गोपियां आगे कहने लगते, अरे देखो ये कृष्ण और बलराम आते हैं, चुपके से आते हैं। जब वो माखन चोरी करते थे तो हमने देखा कि चलो अभी मटके जो है ऊपर टांग के रखेंगे ताकि उनको मिले नहीं। तो ये क्या करते हैं? ये दोनों बच्चे षड्यंत्र रचाते हैं, मिलते हैं, कोई उखल आदि रख के उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर मटके में छेद कर दे फोड़ देते हैं, और वहां से जो दही मक्खन या दूध आता है उसको पी लेते हैं और फिर भाग जाते हैं। और कृष्ण बलराम दोनों के ऊपर ये जो गहने हैं ना, ये सब रत्न, अनमोल रत्न हैं, ये बहुत ही प्रकाशमान है। तो अंधेरे में भी जाते हैं तो इन रत्नों के द्वारा प्रकाश उजाला हो जाता है, जिससे उनको सब दिखाई पड़ता है। और देखो अभी जब हम शिकायत कर रहे हैं यशोदा, ये देखो कृष्ण बलराम कैसे बैठे, मानो कि उन्होंने कोई गलती की ही नहीं है। और फिर सभी गोपियां, सारी गोपियां कृष्ण बलराम की ओर देखते हैं। दोनों ने चेहरे ऐसे छोटे बना के बिल्कुल मानो कि बहुत भयभीत हो गए हैं, ऐसे बैठे हैं, भयभीत चेहरे लेकर दोनों बैठे हैं, डर रहे हैं कि कहीं माता यशोदा, माता रोहिणी हम लोगों को डांट न ले। तो माँ की डांट से डरे हुए हैं भगवान। तो कौन ऐसे विश्वास करेगा कि भगवान भी ऐसे हो सकते हैं, जो डांट से डरते हैं, जो माखन चोरी करते हैं। ये देखिए अद्भुत कल्पना है, अद्भुत कल्पना नहीं है, सत्य है। भगवान ऐसे लीला करते हैं क्योंकि भगवान को ही ऐसे लीलाओं में आनंद आता है। जैसे आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान को भगवान बनना अच्छा नहीं लगता, भगवान को ग्वाल बाल बनना अच्छा लगता, और ग्वाल बाल बन के फिर जो कार्य करते हैं उस भाव में आ जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। जिस प्रकार एक नाट्य लीला में, एक नाटक में जो अभिनेता होता है वो एक राजा की भूमिका निभा रहा होता है, और कभी कभी ऐसे कोई उसमें घटनाएं होती हैं जो बहुत दर्ददायक होती हैं, राजा को रोना पड़ता है, तो वो अभिनेता उसमें इतना प्रवेश कर लेता है उस भूमिका के अंदर कि वो भूल जाता है कि मैं असलियत में कौन हूं। वो अपने आप को राजा ही समझने लगता है, और उस राजा के नाटक के अंदर जो सुख दुख है उसको अपना मान लेता है। और जब दुख का समय आता है तो वास्तव में वो रो लेता है, क्योंकि वो इतना बह जाता है उस नाटक के प्रवाह में, उस भाव में। जैसे हमने सुना कि जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में एक चलचित्र बना, सिनेमा बना था, नीलांचल महाप्रभु, तो वहां जिस अभिनेता ने श्री गौरांग महाप्रभु की भूमिका निभाई जबकि महाप्रभु ने संन्यास किया, तो ये सिनेमा समाप्त होने के बाद जब पूरा हो गया तो इस अभिनेता ने संन्यास ले लिया, ऐसे हमने सुना था, क्योंकि वो भूमिका करते करते उसमें बिल्कुल अंदर चले गए। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण केवल स्तुति स्वीकार करना पसंद नहीं करते कि कोई मुझे मेरी वाह करे, मेरी प्रशंसा करे, ठीक है, भगवान तो वो कर्तव्य रूप से स्वीकार करते हैं, परंतु भगवान को अच्छा लगता है ग्वाल बाल बनना। तो ये है भगवान की लीला। तो ग्वाल बाल अपने आप को सोच कर फिर भगवान ऐसे कार्य करते हैं। तो ऐसे लीला करने में मुख्य नायक हीरो भगवान कृष्ण हैं और उनके मुख्य सहायक बलराम जी हैं। तो ऐसी लीलाएं वो करते हैं। और आगे चल के उनको वत्स पालन की जिम्मेदारी दी गई। वत्स मतलब गाय के बछड़े। जब वो 3 साल के थे, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि उनको हरे उनको स्कूल भेजा जाए, स्कूल से पढ़ाई करके निकले फिर बेरोजगार बन जाए। तो बोलते हैं कि आजकल के स्कूल कॉलेज केवल बेरोजगारी को पढ़ाते जा रहे हैं। कृष्ण बलराम को बचपन से ही अपने कार्य में लगा दिया। जैसे ब्राह्मण का बच्चा होता था उसको शास्त्र पढ़ाने में लगाया जाता था, ये तो वैश्य थे, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम। तो 3 साल के आयु से ही कृष्ण और बलराम को बछड़ों की जिम्मेदारी दी गई, चलो बछड़ों का देखभाल करो, और बड़े आनंद से करने लगे। तो किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं, तो आइए हम इस श्लोक में पढ़ते हैं। ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 11वें अध्याय से है, कृष्ण की बाल लीलाएं। तो इसमें वास्तव में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान जो हैं, कृष्ण और बलराम एक साधारण ग्वाल बाल की भूमिका अब निभा रहे हैं।
तो वत्स पालको भूत्वा सप्रांत राशि को
सा
अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। असुर को मारने के बाद कृष्ण तथा बलराम ने अपना सुबह का नाश्ता किया और बछड़ों की रखवाली करते हुए वे इधर उधर टहलते रहे। भगवान कृष्ण तथा बलराम ने, जो संपूर्ण सृष्टि के पालक हैं, ग्वाल बालों की तरह बछड़ों का भार संभाला। तो वत्स पालको भूतवा, वत्स पालक, वत्स मतलब बछड़े, कौ मतलब द्विवचन, को कृष्ण और बलराम दोनों की बात हो रही है, इसलिए यहां पे पालको कहा गया है। तो वत्स पालको भूतवा, तो ये दो जो हैं कृष्ण और बलराम, तो मतलब ये दोनों कृष्ण और बलराम वत्स पालक भूतवा बने। सर्वलोक एक पालको, लेकिन वो है कौन वास्तव में? सर्वलोक एक पालो, पालो फिर से द्विवचन, ये दोनों समस्त लोकों के पालक हैं, परंतु आज वो वत्सों के पालक बन गए हैं एक छोटे से गांव में। सब प्रातः प्रातः आशो गोवत्सा, सब प्रातः आशो मतलब खाना, सब प्रातः मतलब सुबह सुबह प्रातः काल में, प्रातः काल में उन्होंने नाश्ता कर लिया अपना भोजन सुबह सुबह, क्योंकि उनको वन में जाना था। गोवत्सान चारयन्तो, तो गाय के बछड़ों को वत्सों को चराने के लिए ले गए, और फिर विचेरतु, विचरण करते करते बछड़ों को ले गए। तो ये कृष्ण और बलराम के कार्य थे। तो है वो सर्वलोक एक पालो, समस्त लोकों के पालक आज साधारण गांव बछड़ों के पालक बन गए हैं, वत्स पालक बन गए। इसमें भगवान आनंद लेते हैं। ब्रह्मांडों के पालन करने में इतना आनंद नहीं मिलता उनको जितना कि बछड़ों के पालन करने में, गौओं के पालन करने में मिलता है। तो ये है भगवान, ऐसे भगवान अपने दोनों भगवान कृष्ण और बलराम लीला करते रहे। एक बार कंस ने भेजे हुए एक असुर ने एक वत्स का रूप धारण कर लिया, उसका नाम पड़ गया फिर वत्सासुर, और वो बीच में आया। तुरंत भगवान श्री कृष्ण पहचान गए कि ये असुर है, कंस ने भेजा है इसको, तो इसको मार डालना चाहिए। तो जब कृष्ण भगवान ने पहचान लिया, बलराम से कहा, देखो अभी कंस का भेजा हुआ असुर यहाँ है, वेश बदल के आया है। ये जो असुर हुआ करते थे बहुत शक्तिशाली थे, उनके पास कई योग सिद्धियां हुआ करती थी जिससे कि वो अपने रूप को भी बदल सकते थे। तो भगवान श्री कृष्ण जल्दी से पीछे से जाकर उस बछड़े को अपने पीछे वाले पैरों से पकड़ लिया और घुमा के जोर से ऐसे घुमाया कि उसकी प्राण ही निकल गए घुमाते घुमाते, और उसको ऊपर फेंक दिया, और ऊपर वो एक कपित वृक्ष के ऊपर गिर पड़ा, और फिर उसकी मृत्यु वहां पर हो गई। तो ऐसे हर दिन में, हमारे वैष्णव आचार्य बताते, हर दिन ऐसी दो या तीन घटनाएं हुआ करती थी। हर दिन भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाथाय संभवामी युगे युगे। वो कहते हैं कि मैं धर्म की संस्थापना करने आता हूँ, साधुओं की रक्षा करने आता हूँ, और दुष्टों का विनाश करने आता हूँ, हर युग में प्रकट होता हूँ। तो ये तो कार्य है भगवान के, रूटीन से हर रोज दैनिक एक दो ऐसे करते रहते हैं, परंतु जितने असुर आते हैं जाते हैं उनको मार डालते हैं, लेकिन उनकी जो दैनिक कार्यकलाप है वो बदलते नहीं है। भगवान को गाय चराना है, वो चराते रहते हैं, अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा करते रहते हैं, लीला करते रहते हैं। असुर आते हैं, थोड़ी उत्तेजना होती है सारे ग्वाल बालों में, चलो अब कुछ अब देखेंगे, मजा देखेंगे कैसे कृष्ण बलराम ने इस असुर को मार डालते हैं। फिर भगवान कृष्ण ने बलराम जो है मार डालते हैं, फिर चलो अभी गाय चराते हैं और आगे चलो। तो कृष्ण बलराम की लीलाएं ऐसे हुई। कृष्ण भगवान ने अनेक असुरों का वध किया, शुरुआत से जैसे पूतना, तृणावर्त, शकटासुर, फिर अभिवत्सासुर, बकासुर, अघासुर। उधर बलराम जी ने भी आगे चल के अनेक असुरों का वध किया। जैसे एक असुर था जिसने एक गधे का रूप धारण किया, उसका नाम था धेनुक, तो उसका नाम पड़ा धेनुकासुर। ये भी कंस का मित्र था, कंस के मित्र थे ही सब ऐसे, ऐसे लोगों में ही वो उठते बैठते थे। तो फिर स्तोक कृष्ण, सुबल, सुदामा, ये सब बाल बाल आए कृष्ण बलराम के पास। अरे कृष्ण, अरे बलराम, देखो आप दोनों बहुत शक्तिशाली हो, अब हम वो ताल वन में जाना चाहते हैं, बहुत सुंदर वन है वहां पर, और वहां इतने इतने मीठे फल हैं ताल के, हम खाना चाहते हैं, हमें बहुत भूख लगी है, और उस ताल वन के जो ताल फल हैं, वो उनकी जो सुगंध, उनका सुगंध है, वो महक है, वो अभी तक हवा ले आ रही, देखो कितना सुगंध अच्छा है, हाँ तो हमें वहां जाना है। तो इस राक्षस जो है, भूख का राक्षस है ये पेट में, इसका नाश कर देना और हमें वो सुंदर फल खिला देना। और वहां एक असुर है जिस सबके नाक में दम बना हुआ है, बहुत हैरान करता है शरीर। तो कृष्ण बलराम ने देखा चलो जाते हैं। तो कृष्ण बलराम वहां गए और बलराम जी आगे आए और बड़े जोर से उन्होंने वहां के ताल वृक्षों को हिलाना शुरू कर दिया, बहुत जोर से। वहां धेनुक, धेनुकासुर था अपने मित्रों के साथ जो कि गधे के रूप में थे, तो उन्होंने देखा कि हमारे राज्य में कौन आया है और कौन इस प्रकार प्रकार से उत्पात कर रहा है। तो जल्दी आए, देखा कि यहाँ ये बच्चे हैं और एक गोरा और एक सांवला, और ये ऐसे ताल हिला रहे हैं और इतने सारे ताल फल गिर रहे हैं। और बड़े क्रोधित होकर धेनुकासुर वहां आया। आपने देखा होगा कि गधा आक्रमण कैसे करता है, गधा अपने पीठ दिखाता, अपने पीछे का भाग दिखाता है, फिर दो पैर उठा के फिर लात मारता है, ये गधे का मारने का तरीका होता है। तो धेनुकासुर आया बलराम के सामने, मुड़ा, मुड़ के फिर अपने बहुत प्रहार किया अपने पैरों से, लेकिन बलराम जी वहीं के वहीं खड़े रहे, उनको कोई के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। तो बलराम जी ने भी मुक्का प्रहार किया, फिर से धेनुकासुर आया, फिर से लात मारा, फिर भी बलराम को कुछ नहीं हुआ। फिर बलराम जी ने सोचा चलो बहुत हो गया, तो उन्होंने धेनुकासुर के पीछे के पैर पकड़ लिए, जब जैसे वो लात मार रहा था पकड़े और ऐसे घुमाया घुमाया घुमाया, बहुत जोर 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 से, इतने जोर से घुमाया कि घुमाते घुमाते उसके प्राण निकल गए, और इतनी गति पहुंच गई थी घुमाते घुमाते, और जब छोड़ा तो इतना वेग था कि वो शरीर, धेनुकासुर का शरीर जो पहले से बहुत भारी था और उसके ऊपर ही बलशाली बलराम जी ने इसे फेंका था बड़े वेग से, तो उस ताल वृक्ष के ऊपर गिर पड़ा और वो एक ताल वृक्ष दूसरे वृक्ष के ऊपर गिर पड़ा, और एक दूसरे तीसरे के ऊपर, तीसरे चौथे के ऊपर, ऐसे ढेर सारे सैकड़ों वृक्ष वहां गिर पड़े, सब टूट गए और सारे ताल फल भी नीचे गिरे। उधर धेनुकासुर के मित्र क्रोधित होकर सामने आए, अरे ये कौन है, हमारे मित्र को मार डाला है इसने। तो सारे वहां गधे के रूप में असुर जितने थे वो सब आए और कृष्ण बलराम ने मिलकर बहुत आसानी से उन सब का वध कर दिया। और ऐसे लग रहा था कि रंग बिरंगी यहाँ बादल सब बैठे हैं, सब मेरा सब यहाँ पर फैले हुए हैं, कभी लाल कभी पीले, लाल खून था तो कहीं बादल लाल बादल, कहीं नीले बादल। और फिर देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी, साधु साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इस प्रकार से बलराम ने धेनुकासुर और उसके जितने भी साथी थे उनका वध कर दिया। जैसे आजकल आतंकवादी लोग जाके सब जगह उत्पात करते हैं और बताया जाता है हाँ आके फिर कोई उनको मार डालता है, उसी प्रकार से वो उस जमाने के आतंकवाद थे, ये सब रेणुकासुर वत्सासुर, उनका काम था आके उत्पात करना, हैरान करना लोगों को। आगे चल के उन्होंने प्रलंबासुर का भी वध किया। ऐसी इनकी लीलाएं कृष्ण बलराम की चलती रही। आगे चल के जब श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़ना पड़ा तो बलराम जी भी साथ में आए, अक्रूर जी उनको ले गए। उधर कंस के दरबार में मलयुद्ध हुआ, दरबार में नहीं बाहर उन्होंने विशेष योजना की थी। मलयुद्ध में चारों मुष्टिक आदि को मार डाला कृष्ण बलराम ने, और फिर श्री कृष्ण ने कंस का ही वध कर दिया। कृष्ण और बलराम हमेशा साथ में रहे। फिर शांतिपुरी मुनि के आश्रम में अवंतीपुर में, जो आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। हालांकि वो भगवान हैं, फिर भी उन्होंने गुरु को स्वीकार किया। फिर भी वो एक गुरुकुल में गए और बहुत ही जल्दी सब कुछ सीख लिया, आखिर वह है भगवान सर्वज्ञ। फिर गुरु दक्षिणा अपने गुरु को देकर फिर से लौटे और फिर अंततः द्वारका आए। द्वारका में भी कितनी सारी सुंदर लीलाएं हुई जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में शुभदेव गोस्वामी करते हैं। तो इन लीलाओं को सुनने से बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे भवरोग के लिए औषधि है। जैसे परीक्षित महाराज कहते हैं, निवृत्त तर्षे उपगीय मानात भवौषधा श्रोत्र मनोविरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात उमान विरचित बिना पशुकनाथ। वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे सुखदेव जी, निवृत्त तर्षय, जिनकी भौतिक तृष्णा समाप्त हो गई है, भौतिक संसार को भोग करने की लालसा समाप्त हो गई है, निवृत्त तर्षय उपगीय मानात, ऐसे लोग गीत गाते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं भगवान कृष्ण के बारे में, भव औषधा श्रोत्र मन अभिरामात। तो ऐसे भगवान कृष्ण बलराम के बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण करने से ये इस भव रोग के लिए, इस जन्म मृत्यु के चक्र की बीमारी के लिए सबसे उत्तम औषधि है, श्रोत्र मन अभिरामात। और ये कड़वा नहीं है, कभी कभी औषधि कड़वे होती है, लेकिन ये तो बहुत मधुर है और मन को कान को बहुत अच्छे लगते हैं। भवौषधा श्रोत्र मनोविराम का उत्तम श्लोक गुणानुवाद। तो कौन ऐसे व्यक्ति है जो भगवान कृष्ण की कथाओं को नहीं सुनेगा? बिना पशुनाथ, केवल एक पशु का हत्यारा, पशु की हत्या करने वाला व्यक्ति जो बहुत क्रूर है, जिसके अंदर कोई करुणा की भावना नहीं है, जो स्वयं पशुतुल्य है, केवल ऐसा व्यक्ति मात्र इन कथाओं को सुनेगा नहीं। लेकिन अन्य जितने भी है, ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति है जो अपने आप को भगवान की कथाओं से दूर रखेगा, जबकि इतना मधुर है, इतना सुंदर है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मैंने ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ केवल एक उद्देश्य से बनाया है, और वो क्या है कि इस दुनिया के लोगों को भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करने का एक अवसर मिले। सत्संग, जिस संग में आकर हम सब भगवान के बारे में सुने, भगवान के बारे में बोले, अभ्यास करके भगवान का स्मरण करते रहें, भगवान का दर्शन करें, भगवान की सेवा करें, इस प्रकार से भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत करके अपना जीवन सफल बनाए। तो यहाँ श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर है, जगन्नाथ बलदेव जी सुभद्रा मैया हैं, बलराम जी यहाँ बलदेव के रूप में विराजमान है इस मंदिर में। साथ साथ वही बलराम इस कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं, जैसे कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो बलराम जी हमारे मंदिर में दो रूपों में विराजमान है, एक तो जगन्नाथ जी के साथ में बलदेव के रूप में, और दूसरे चैतन्य महाप्रभु के साथ में नित्यानंद प्रभु के रूप में। बलदेव जी से हमें कृपा याचना करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही हम भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। वृंदावन के बाद भी द्वारका में अनेक लीलाएं हुई। बलराम जी न तो कौरवों के पक्ष में गए न पांडवों के पक्ष में। उनको बड़ा दुख हुआ कि इन दोनों के बीच में युद्ध होना है, इसलिए वो वहां से चले गए तीर्थ यात्रा में। तीर्थ यात्रा में चलते चलते सिंधु प्रदेश से शुरू करके फिर सरस्वती नदी के पास आकर फिर यमुना गंगा होते होते अनेक स्थानों में गए। नैमिषारण्य आए। नैमिषारण्य में आके उन्होंने देखा कि वहां पर ऋषि मुनि में एकत्र हुए हैं, पुराण की कथा सुन रहे हैं रोम हर्षम सूत से। सूत मतलब एक ऐसी जाति होती है जो शास्त्रों के हिसाब से नहीं होता। प्रतिलोम और अनुलोम ऐसे दो प्रकार के विवाह बताए जाते हैं। जब पुरुष एक वर्ण का होता है और स्त्री किसी निम्न श्रेणी के वर्ण से होती है या उसी वर्ण से होता है होती है तो ये अनुलोम विवाह बताया जाता है, जो सही है। लेकिन जब उल्टा हो जाता है, जब स्त्री का वर्ण पति के वर्ण से ऊंचा होता है तो वो प्रतिलोम विवाह बताया जाता है। तो ये सूत जाति, उनसे जो संतान उत्पत्ति होते हैं उनसे सूत जाति से एक प्रकार का प्रतिलोम विवाह का संतान है। तो रोमहर्षण सूत वहां बैठे थे, व्यासदेव जी के शिष्य थे और वो प्रवचन कर रहे थे पुराणों के ऊपर, क्योंकि वेद व्यास जी ने उनको पुराण सौंपे थे। तो बलराम जी जब वहां पर आए उस स्थान में तो सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए बलराम जी का स्वागत करने के लिए। तुरंत बलराम जी को पहचान पाए, रोमहर्षण सूत पहचान नहीं पाए और वो अपने व्यास गति पर बैठे रहे। तो बलराम जी ने कहा कि अरे देखो, ये है वैसे सूत लेकिन यहाँ इतने सारे ब्राह्मण बैठे हैं, फिर भी ऊंचे स्थान में बैठे हैं और मैं यहाँ आया हूं, खड़े भी नहीं हुए हैं। भगवान के हृदय में तो कोई घमंड नहीं होता। भगवान अन्यों के हृदय में जो घमंड है वो ठीक करने यहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने एक घास का तिनका लिया और रोमहर्षण सूत से स्पर्श किया और रोमहर्षण सूत की मृत्यु हो गई एक घास के तिनके से। वहां ऋषियों के सभा में हाहाकार हो गया, अरे क्या कर दिया आपने प्रभु, अभी हमने तो वरदान दिया था इस रोमहर्षण सूत को कि आपकी आयु बहुत लंबी होगी पर आपने आके मार ही डाला, अब क्या किया जाए। अब आप तो भगवान हैं और आप पूर्ण स्वतंत्र हैं और आपने जो किया वो से ठीक है, लेकिन अब क्या किया जाए। ऐसा कुछ कीजिए जिससे आपका कार्य भी बना रहे और हमारी वाणी भी बनी रहे, हमने जो वचन दिया था वो भी बना रहे। बलराम जी ने कहा मैं तो इसे जीवित कर सकता हूं, मैं कर लूं। नहीं नहीं, फिर आप सच्चे नहीं रहोगे, आपके आपने जो कार्य किया उसे रहने दीजिए, साथ साथ हमारे वचन को भी पूरा कीजिए। तो फिर बलराम जी ने कहा कि ऐसे कहा जाता है कि पिता अपने पुत्र के रूप में जीता है, तो मैं आपका जो वरदान जो इनको था वो इनके पुत्र के ऊपर स्थानांतरित कर देता हूँ। और ये जो पुराणों के कहने की जो कला है, कथा है, ये जो योग्यता है वो उसके पुत्र में प्रदान कर देता हूँ और फिर आप जैसे कहें मैं प्रायश्चित करता हूँ। मैं तीर्थ यात्रा में तो आ ही गया हूँ और आगे और भी तीर्थ यात्रा करूंगा, लेकिन और क्या प्रायश्चित है वो बताइए। तो ऋषियों ने कहा कि यहाँ एक असुर है जिसका नाम है बलवल, वो आके हमें बहुत हैरान करता है, सारे हमारे यज्ञ स्थली को प्रदूषित कर देता है, तो कृपया इस बलवल का वध कर दीजिए। तो बलराम जी ने कहा ठीक है। और जैसे ही वो बलवल आए तो बलराम जी ने आक्रमण किया और बहुत ही कम समय में बलवल का भी हत्या कर दी। विनाशाय च दुष्कृता। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों आते हैं न केवल धर्म की स्थापना करने के लिए, न केवल दुष्टों का विनाश करने के लिए, परंतु हम सबको याद दिलाने के लिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम सब उनके अंश हैं, उनकी सेवा करना, उनके प्रति प्रेम की भावना जागृत करना हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, और हमें उनकी सेवा के पथ को स्वीकार करके उनकी सुंदर सुंदर लीलाओं को और उपदेशों को सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए, और इस प्रकार से हमारे चित्त को शुद्ध करते करते हमें मृत्यु के बाद भगवान के धाम में कृष्ण बलराम की गोचार लीला में शामिल होने के लिए जाना है। आपको भी वत्स पालक बनना है गोलोक वृंदावन में, तो तैयारी करनी है कि मृत्यु के बाद हम भी चले जाएंगे श्री कृष्ण बलराम के बीच में, हम भी कोई एक उनके बीच में कोई ग्वाल बाल बने, कोई कोई गौ, कोई वत्स बने, कोई क्या बने, उनकी लीला में शामिल होने के लिए। वहां कोई आतंकवाद की समस्या नहीं, वहां कोई भी समस्या, कोई भूख नहीं, प्यास नहीं, समस्या कोई नहीं, बस आनंद ही आनंद, दिव्य आनंद। तो वहां जाना हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो यहाँ आप आइएगा, यहाँ वीजा उपलब्ध है, पासपोर्ट वीजा इस मंदिर में मिल जाता है, परंतु बार बार आना पड़ता है, एक बार आने से नहीं मिलता। तो बार बार रोज प्रतिदिन आइए यहाँ पर, रोज आपकी हाजिरी डालते जाइए भगवान के सामने, भगवान देखें कि हाँ भैया आए हैं, हाँ भगवान मैं हाजिरी दे रहा हूँ, आज मैं आया हूँ आपका दर्शन लेने के लिए और आपको बताने के लिए कि मैं हूँ आपकी सेवा में और आपके भक्तों की सेवा में। आपका आदेश क्या है बताइए। श्री कृष्ण बलराम कलयुग में गौर निताय के रूप में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन का उद्घाटन उन्होंने किया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इस संकीर्तन आंदोलन में शामिल होकर हम सब बहुत ही जल्दी अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। तो हम सबको धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप समय निकाल कर आज यहाँ श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में आए हैं इस बलराम जयंती के उपलक्ष्य पर। यहाँ भक्तों ने बहुत सेवा की है, हम सब भक्तों को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने की ये सुंदर श्रृंगार किया है सारे मंदिर का, भगवान की श्री मूर्तियों का अभिषेक आदि के लिए बहुत सेवा की है। तैयारियां करते हुए उन्होंने कई घंटे यहाँ सेवा की है, साथ साथ अनेक भक्त प्रसाद बनाने में लगे हुए थे और अब भी हैं, प्रसाद वितरण भी करेंगे। तो इन सब भक्तों को मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यही जीवन को मतलब देता है, जीवन को अर्थ देता है जब हमें कोई भगवान की सेवा मिले। भगवत सेवा हीन जीवन व्यर्थ है, ये हमारा सबसे बड़ा धन है कि हमें भगवान की सेवा करने का कोई अवसर मिला है। इतनी भी सेवा क्यों ना हो, छोटी सी सेवा। तो यही भावना हम सबके मन में बनी रहे, ये हम श्री बलराम जी से प्रार्थना करेंगे क्योंकि आज उनका आविर्भाव दिवस है। श्री बलराम जयंती महोत्सव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, गौर प्रेमानंदे। तो आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी माइक।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
ये आज की प्रवृत्ति के ऊपर तो नहीं है, फिर भी कुछ लोग ऐसे मायावादी हैं जो अपने आप को धार्मिक संस्था धार्मिक समझते हैं और ये समझते हैं कि महाभारत और रामायण का भगवान नहीं है, और वो भगवद गीता पढ़ते भी हैं तो ऐसा समझते हैं भगवान श्री कृष्ण उसको बोला नहीं है और किसी ने बाबू जी बोला है, और उन लोगों का ऐसा कैसा मतलब कभी कभी हमारे दुर्भाग्य से लोगों का कैसा संपर्क आता है कि अपने आप को पति पत्नी को वो भाई बहन समझते हैं और जबरदस्ती वो करते हैं कि हम आपको राखी राखी बनने के लिए आएंगे, तो इनको कैसा हम लोग दूर करना चाहिए कैसा?
जब तक भगवान का भगवान की वाणी उनको हम नहीं सुनाएंगे तब तक कोई उपाय नहीं है। जैसे हम पहले कह रहे थे, सब लोग अपने मत के ऊपर चल रहे हैं या किसी और के मत के ऊपर चल रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, परंतु भगवान का मत क्या है ये हमें देखना चाहिए। इस दुनिया में या इस देश में रहते हुए अगर समझ लीजिए कि हमें अदालत में जाना पड़े और हम न्यायाधीश से कहें कि आप जो निर्णय लेंगे मेरे लिखे हुए ग्रंथ के आधार पर, मैंने कानून लिखा है तो उस कानून के ग्रंथ के हिसाब से आप देखिए मैंने जो किया वो सही किया कि नहीं किया, तो न्यायाधीश मानेंगे नहीं मानेंगे, वो कहेंगे आपका ग्रंथ रखो आपके पास, मेरे पास सरकार के ग्रंथ है, मैं उनके आधार पर सब निर्णय लूंगा। कितना परिश्रम किया होगा उस व्यक्ति ने अपना ग्रंथ बनाने के लिए, क्या मूल्य है? कुछ नहीं। उसी प्रकार से दुनिया में भी लोग अपने अपने ग्रंथ बनाते हैं जीवन के लिए और ऐसे कहते नहीं ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन क्या मूल्य है? कुछ नहीं। हमें अधिकृत जो ग्रंथ है भगवान की वाणी है उसको जानना चाहिए, उसके आधार पर हमारे कार्य हमें करने चाहिए, हमारा सोच विचार शास्त्रों के ऊपर आधारित होना चाहिए। शास्त्रों के ऊपर आधारित नहीं है और किसी व्यक्ति ने इस ज्ञान को तथाकथित ज्ञान को शुरू किया है तो उसका कोई योग्य नहीं। हाँ जी, उसको चालू कीजिए।
हरे कृष्ण। बलराम जी का दूसरा नाम दाऊजी है, ये कौन से गुण के ऊपर है?
कौन से?
बलराम जी का नाम दाऊजी भी कहते हैं, ब्रज में दाऊजी मैक्सिमम प्रसिद्ध है, तो उसको कैसे?
दाऊजी मतलब ब्रज भाषा में बड़े भाई, इसे दाऊजी कहते हैं। दाऊजी का भैया कृष्ण कन्हैया।
हरे कृष्ण भक्त जी, जब बलराम जी का जन्म हुआ था तब व्यासदेव देवल ऋषि सब आए थे, फिर उन्होंने वहीं क्यों रहना चाहिए था ना, भगवान उधर ही है तो चले गए क्यों?
भगवान की लीला होती कैसे? भगवान की लीला के लिए तो उनको स्थान देना है, वो सभी लोग वहां रह जाते तो सभी को पता चलता। ये तो बस अभी भगवान दूर से भगवान की लीला का स्मरण और लीला का दर्शन करेंगे दूर दूर से। ये सेवा भाव का अनुशीलन कैसे करना चाहिए श्री कृष्ण बलराम की सेवा में? गुरु कृष्ण के और वैष्णवों के आदेश का पालन करके फिर बलराम जी की कृपा प्राप्त होती है। बलराम जी हमें वो बल देते हैं जिससे कि हम अच्छी तरह से कृष्ण बलराम की सेवा कर सके। तो अभी आखिरी अंतिम प्रश्न,
हम देखते हैं कि देवकी का गर्भपात हो गया ऐसा माना जाता है और 5 दिन के बाद बलराम जी का आविर्भाव हो गया और तुरंत उसी साल भगवान कृष्ण का जन्म देवकी की तरफ से हो गया कि अगले साल है?
अगले साल में
बलराम एक साल का
है। नहीं, पहले बलराम जी है, बलराम जी तो बड़े भाई है ना, दाऊ जी बड़े भाई है, तो पहले बलराम जी का जन्म हुआ और बाद में श्री कृष्ण का। ठीक है, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। पीछे विराजमान है, देखिए कृष्ण बलराम जी लोगों को चला रहे हैं पीछे, जाते जाते दर्शन करिए। तो अभी आरती होगी। आरती के बाद फिर प्रसाद होगा सर।
हरे कृष्ण, कृपया थोड़ी देर बैठे रहिए। अभी आरती प्रारंभ होने वाली है, इससे पहले कि आरती प्रारंभ हो कुछ सूचना है। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे दिवंगत प्रभु के वृंदावन से विशेष करके यहाँ पर यहाँ कृष्ण कथा करने के लिए आए हैं। जोर से हरि बोल कहते हैं।